नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र, आपका स्वागत है।
धन्यवाद शक्ति, सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 10 पदक जीते। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के तीसरे दिन आज तैराकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन और हॉकी के मुकाबले हुए। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट कल से शुरू। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। और भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरुजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया। बैंकॉक में खेले जा रहे एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में आज भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों का दबदबा देखने को मिला। भारत ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक और पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। एक रिपोर्ट।
भारतीय तीरंदाजों ने आज एक के बाद एक स्वर्ण और रजत पदक पर निशाना साधते हुए भारतीय पदकों की संख्या को दहाई में पहुंचाकर पिछले वर्ष की पदकों की संख्या का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। भारत ने आज व्यक्तिगत और टीम, रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में कुल 8 पदक जीते। अब भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिनमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड में भारत ने क्लीन स्वीप किया। उदय कंबोज ने हमवतन खिलाड़ी प्रथमेश जवकर को 145-144 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं रजत चौहान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में तेजल सालवे ने कांस्य पदक जीता। भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने टीम इवेंट्स में भी अपना दबदबा बनाए रखा और मिक्स्ड और महिला टीम इवेंट्स में स्वर्ण और रजत पदक। कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में चिकिता तनिपार्थी और रजत चौहान ने एक बड़े गोल्ड मेडल मुकाबले में मलेशिया की फातन नूर फतेहा मत सालेह और मोहम्मद जुवैदी मजूकी को हराया। दूसरी ओर भारत की महिला कंपाउंड टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रिकर्व में रिधि और पुरुषों की टीम ने अपने अपने मुकाबलों में रजत पदक हासिल किए। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
वो रिधि हो, मोहित हो या इन तमाम युवा खिलाड़ियों के नाम अब लोगों को याद कर लेने चाहिए, क्योंकि यही सितारे हैं आर्चरी के।
जी हाँ, दरअसल ये बहुत ही हार्टनिंग न्यूज कही जा सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं शक्ति 2026 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस बार एशियाई खेलों का आयोजन होना है और अगले साल काफी लंबे समय के बाद दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा इवेंट आर्चरी का होने वाला है। 2005 में लास्ट टाइम हुआ था और उसके 22 साल बाद इवेंट होगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्लस 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। देखिए, मैं कुछ थोड़े दिन पहले कुछ विचार कर रहा था तो दिमाग में कई बातें आ रही थी कि आर्चरी में हमारे पास ओलंपिक का मेडल नहीं है, और 2012 में लंदन ओलंपिक्स जब हुए थे तब दीपिका कुमारी वहां पर मौजूद थी और भारतीय टीम ने पिछले लगभग 15-18 सालों में बहुत ही बढ़िया सभी जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहां पे आप देखें, जिस टूर्नामेंट का एक्चुअली हम जिक्र कर रहे थे, रिपोर्ट में हमने सुना 10 मेडल हैं, 10 में से 6 कंपाउंड में हैं और 4 रिकर्व में हैं, और रिकर्व को ट्रेडिशनल माना जाता है, कंपाउंड को मॉडर्न आर्चरी का स्वरूप माना जाता है। और उसमें भी अगर पुरुषों में इंडिविजुअल में बात करें तो उदय कंबोज का स्वर्ण पदक जीतना, प्रथमेश जावकर का सिल्वर जीतना, और उनकी तुलना में जो रजत चौहान हैं वो ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो जैसे आपने कहा कि युवा खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, कुल मिलाकर के बहुत ही हार्टनिंग, एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन में कह रहा हूं, रिजल्ट है। और जो ये एक परिणाम है 145-144, एक पॉइंट के फासले से स्वर्ण पदक जीता गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि तैयारी के लिहाज से परिस्थितियां बेहतर दिख रही हैं भारतीय आर्चरी के लिहाज से। और 2026 अगर अच्छा जाता है आर्चरी में तो डेफिनेटली, क्योंकि हम देखिए शूटिंग में भारत ने ओलंपिक खेलों में मेडल जीते हैं, कुश्ती में मेडल जीते हैं, हॉकी में हम लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं, लेकिन आर्चरी एक ऐसा, तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जिसमें कई बार लगता है कि कितने दूर कितने पास वाली कहानी दोहराई जा रही है। तो मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूं लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का, कि जब भारतीय तीरंदाज वहां पे पहुंचते रहे, पिछले ओलंपिक्स में भारतीय तीरंदाज पहुंचे हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और द अदर मेडल छूटा है। तो ये जो थाईलैंड से परिणाम आया ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें एक और जो प्लस पॉइंट है, जैसा रिपोर्ट में भी कहा गया कि पिछली बार का जो परफॉर्मेंस था उससे बेटर परफॉर्मेंस है, और अब दिल्ली में इवेंट होगा जब, तो जाहिर सी बात है, हालांकि इस साल के काफी सारे इवेंट बाकी हैं, ये तो स्टेज वन था, और आर्चरी में भी वर्ल्ड कप होते हैं, जिस तरीके से शूटिंग में वर्ल्ड कप होते हैं, तमाम ग्रांप्री इवेंट्स होते हैं, तो जितना अनुभव मिलेगा भारतीय खिलाड़ियों को उतना बेहतर है। और अगर आपस में ही कम्पीट कर रहे हैं पोडियम फिनिश के लिए, तो ये सोने पर सुहागे वाली बात कही जा सकती है।
बिल्कुल, तो माना जा सकता है शिवेंद्र की 2028 में शायद वो जो दीपिका के मेडिकल की कसक चूक गई थी कुछ अंकों से, उस फासले को पाटने का काम करेगा ये हौसला और जज्बा जो यहां से खिलाड़ियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तीसरे दिन आज रायपुर में तैराकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन और हॉकी के मुकाबले हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आज वेटलिफ्टिंग में महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की अनई वांगसू ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं 63 किलोग्राम वर्ग में ओडिशा की वीडू स्मिता भोई ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके साथ ही पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में मिजोरम के सिल्वन ने और 79 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के रिचिन ने स्वर्ण पदक जीता है। आज हुई तैराकी की स्पर्धाओं में महिलाओं के 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में महाराष्ट्र की तन्वी ध्रुवे ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 50 मीटर फ्री स्टाइल में कर्नाटक की मेघांजलि ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा पुरुष वर्ग की 100 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में कर्नाटक के मणिकांत एल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा 50 मीटर फ्रीस्टाइल में कर्नाटक के ही धुनेश एन ने स्वर्ण पदक जीता है। आज महिला वर्ग के ग्रुप स्टेज के फुटबॉल मुकाबले भी हुए। इनमें झारखंड ने असम को 1-9 से और गुजरात की महिला फुटबॉल टीम ने आंध्र प्रदेश को 0-25 से मात दी है। कल से छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में कुश्ती के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इनमें 30 राज्यों के 144 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
मणिकांत एल, एक तरफ पूरे खेलो इंडिया के मेडल चलते हैं और एक तरफ मणिकांत जब पानी में उतरते हैं तो सोना लेकर के निकलते हैं।
ये देखिए शक्ति, ये तिरंदा, ये जो स्विमिंग का जो डिसिप्लिन है ये बड़ा अमेजिंग है। यहाँ पर न केवल यहाँ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हम देख रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, इसके अलावा भी इवन नेशनल्स होते हैं, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां हमने बहुत बार देखा है कि एक खिलाड़ी तरणताल में जाकर के मल्टीपल मेडल्स निकाल करके लेके आता है। लेकिन जरूरत है उसकी सस्टेनेबिलिटी की, वो जो मेडल निकाल के लाया है उसका लेवल आगे बढ़े और उसमें और इजाफा हो। अब यहां पर ये जो गेम्स हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो आप देखें कि इंडिया के, भारत के कोने कोने से, अरुणाचल से खिलाड़ी आ रहे हैं। और अभी हम जिस गेम का हमने सबसे पहले जिक्र किया था, आर्चरी यानी तीरंदाजी, वो भी ट्राइबल बेल्ट में बहुत ही पॉपुलर रहा है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब एक टैलेंट हंट स्कीम शुरू की थी तो हमारे बहुत पुराने और जाने माने तीरंदाज रहे लिंबाराम, जो भारतीय टीम के कोच भी रहे, लालथन हावला, लिंबाराम, जो ये खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, मैं कह सकता हूं कि पीछे जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं या फिर यूथ गेम्स हुए हैं उनमें एक बहुत ही नायाब एक एडिशन है खेलो इंडिया की जो श्रृंखला भारत में शुरू हुई है, और इससे जो ट्राइबल बेल्ट से आने वाले खिलाड़ी हैं उनको स्पेसिफिकली बहुत बढ़ावा मिलेगा।
जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक बहुत सार्थक पहल होगी जो आगे चल के जिसके परिणाम बड़े टूर्नामेंट्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में देखने को मिलेंगे भारत को। और अब रुक करते हैं क्रिकेट का। इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग का रोमांच एक बार फिर से शिखर पर चढ़ने को तैयार है। कल से प्रतियोगिता की शुरुआत होगी, जहां पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।
आईपीएल क्रिकेट का 19वां संस्करण कल से शुरू हो रहा है। 65 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीम खिताब जीतने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान देश के 13 मैदानों पर 74 मुकाबले खेले जाएंगे। कल पहले मैच में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। इस सत्र में आरसीबी की बल्लेबाजी काफी मजबूत दिख रही है। ओपनिंग में विराट कोहली और फील्ड सॉल्ट, मध्यक्रम में कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल प्रमुख भूमिका निभाएंगे। फिनिशिंग की जिम्मेदारी टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड पर होगी। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ हैदराबाद ने कप्तान पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ईशान किशन को कार्यवाहक कप्तान बनाया है। सबकी नजरें ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर होंगी। मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन प्रमुख भूमिका निभाएंगे, जबकि लियाम लिविंगस्टोन निचले क्रम में ताकत बढ़ाते दिखेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आईपीएल अपने पहले ही मैच से रोमांच का टॉप गियर लगाने को तैयार है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो शिवेंद्र, रोमांच अपने टॉप गियर पर है और क्यों ना कहा जाए कि ये द इंडियन प्रीमियर लीग हो गई है।
बिल्कुल, ये एक जैसे कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स में है उसका एक बहुत ही नायाब, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है इंडियन प्रीमियर लीग। और दो टीमें जो कल खेलने वाली है, सनराइजर्स हैदराबाद शक्ति ऐसी टीम है जिसने चार बार 275 प्लस का स्कोर किया है जी। तो उनके जैसे बैटर का मुकेश नाम बता रहे थे, अभिषेक, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, अमेजिंग प्लेयर्स हैं। अब पैट कमिंस शुरुआत में नहीं होंगे, ईशान किशन टीम का नेतृत्व करेंगे और हम सभी जानते हैं ईशान किशन ने हाल में किस तरीके की बल्लेबाजी की है। दूसरी तरफ आप आरसीबी को देख लें, 2016 की चैंपियन है सनराइजर्स हैदराबाद, 2024 की रनर्स अप है। और दूसरी बार आरसीबी जो कि लास्ट टाइम की चैंपियन है वो तीन बार रनर्स अप रहे थे और उनकी टीम में कंसिस्टेंसी बड़ी जबरदस्त है। मुझे लगता है कि जो विनिंग परसेंटेज दोनों टीमों का निकाला गया था उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद 48.20 अभी तक जो मैच खेले हैं और आरसीबी 50 समथिंग, तो ज्यादा अंतर नहीं है। मुझे लगता है बल्लेबाजी में तो दोनों तरफ मामला बराबर बराबर है, लेकिन अगर गेंदबाजी में बात करें तो मुझे भुवनेश्वर कुमार, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के लिए तमाम मैचेस खेल चुके हैं, उन पर निगाहें रहेंगी। और ऑफ कोर्स सनराइजर्स हैदराबाद बल्लेबाजी में थोड़े 20 लगते हैं, लेकिन आरसीबी ज्यादा बैलेंस्ड टीम मुझे नजर आती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स अगर किसी टीम में ज्यादा होते हैं तो वो एक जो शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम है जिसमें 2020 जो फटाफट संस्करण है वहां पर टीम को एज दे सकता है नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स की संख्या।
जी बिल्कुल, बल्लेबाजी को एक डेप्थ प्रदान करता है और गेंदबाजी में एक अतिरिक्त विकल्प मिलते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ियों से। और उम्मीद होगी कि कल चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जिसका इंतजार रहता है, एक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिले। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी भारत वार्षिक पुरस्कार समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार लोगों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और देश में खेल के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरुजंत सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने नई दिल्ली में इसी पुरस्कार समारोह में लगभग एक दशक लंबे 130 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 33 गोलों के शानदार करियर को अलविदा कहा।
भारत के इस दिग्गज फॉरवर्ड खिलाड़ी ने हॉकी के मैदान पे तो अपना करिश्मा दिखाया ही, भारत में आधुनिक हॉकी के पुनर्द्वार में भी अहम किरदार निभाया। उन्होंने भारतीय हॉकी के सबसे यादगार पलों में से एक 2016 में लखनऊ में जूनियर विश्व कप की जीत में अहम योगदान दिया। फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए गोल करने के बाद गुरजंत ने 2017 में वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और भारतीय आक्रमण पंक्ति के मजबूत स्तंभ बन गए। उन्होंने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 दोनों ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरजंत ने भारत को 2022 हांगझोऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, 2017 एशिया कप में स्वर्ण पदक और कई एशियाई चैंपियन ट्रॉफी खिताब दिलाने में मदद की। 2021 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मानों में से एक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
तो भारतीय हॉकी का एक शानदार खिलाड़ी आज अपने करियर को अलविदा कह रहा है, क्या कहेंगे शिवेंद्र?
जी हाँ, गुरजंत बड़े शानदार खिलाड़ी रहे। सारा डेटा जो हमने सुना वो बिल्कुल एकदम उसको जस्टिफाई करता है। इनफैक्ट FIH प्रो लीग 2020 में आज से कुछ साल पहले नेदरलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 13 सेकंड में गोल किया था, जो फास्टेस्ट गोल की कैटेगरी में शामिल है जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं फास्टेस्ट गोल को। और गुरजंत का करियर बड़ा बेहतरीन इस लिहाज से भी रहा कि देखिए, दो बार जैसे मैंने जिक्र किया था कि ओलंपिक खेलों में भारत ने मेडल जीते लगातार, पिछले पेरिस में और उसके पहले टोक्यो में, वो दोनों टीमों में गुरजंत शामिल थे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, जूनियर वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक, वहां गोल्ड मेडल, एक फुल फ्लेज्ड उनका एक संपूर्ण करियर रहा। पिछले साल से वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए थे।
तो बिल्कुल, इसी के साथ आज कार्यक्रम को समाप्त करते हैं शुभकामनाओं के साथ, और धन्यवाद शिवेंद्र आपका, और श्रोताओं इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।